लिसाइलिन का जो सवाल था, इसके बारे में आप में से किसी का सवाल था बाद में कि इससे कौन मुराद है, कौन है सवाल करने वाले, तो साइलिन से अगर आप तफसीर के मुताबिक बात लीजिए तो फिर तो मुशरिकीन मक्का ही मुराद है, ठीक है। और अगर आप इसको वाइड स्प्रेड कर दें तो हर बंदा क़यामत तक के लिए जो आता है, जिसके जहन में ये सवाल उभरता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का किस्सा क्या था, इसकी रियलिटी क्या थी, तो उसके लिए भी यही है। यानी ये बिल्कुल एक जनरल बात है। लेकिन हमने सबक के आखिर में देखा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र बेमिसाल है, और उनके लिए यहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो क्या हैं कि फ़सब्रुन जमील। तो सब्र जमील कौन सा सब्र होता है, लिख लीजिए कि असब्रु ला शिकवा तफीहा, वो सब्र जिसमें शिकवा ना किया जाए। देखिए कि सब्र आ ही जाता है और सब्र आते आते ही आता है, लेकिन मौका पड़ने पर, तकलीफ़ आने पर अगर सब्र करेंगे तो फिर उस वक़्त का सब्र जो है वो हकीकत में इंसान को बहुत ज़्यादा ढारस देता है। एक औरत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कब्र पर बैन करते हुए देखा, तो आपने उसको कहा कि इस बिरी सब्र कर, तो कहने लगी, चूँकि वो आपको नहीं पहचानी थी, कहने लगी जो तकलीफ़ मुझ पर पड़ी है अगर तुम पर पड़ती तो तुम्हें पता चलता। अमूमन हम यही सोच रहे होते हैं कि दूसरा मेरे हालात नहीं जानता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन सब्र इन द सदमतिल उला, कि सब्र है भी तो यही कि सचोट पढ़ने के वक्त पे किया जाए। तो बिल्कुल यही कैफियत हमें यहाँ दिखती है कि सब्र जमील ऐसा सब्र होता है कि जिसमें शिकवा ना हो, इसी तरह से फरियाद ना हो, जज़ा फजा ना हो, ठंडे दिल से किसी भी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाए जो किसी भी आली ज़र्फ़ इंसान पर पड़ी हो। यानी सब्र जमील में बुनियादी तौर पर अपने गम को सिर्फ़ अल्लाह के सामने पेश करना है। आगे फिर दोबारा चोट पड़ेगी तो हज़रत याकूब की ज़ुबान पे जो सब्र के लफ्ज़ आएंगे, इंशाल्लाह वहाँ हम इसकी ज़्यादा तफसीलात देखेंगे। लेकिन खुलासा पिछले सबक का यही है कि बाप और बच्चों का बेहतरीन किरदार हमें दिखता है। हम अमूमन ऐसी चोटों पे, और अल्लाह ना करे किसी को पढ़े, लेकिन अपने ऊपर लेके सोचिए कि आपके बाकी बच्चों की वजह से आपकी कोई एक बच्ची या बच्चा मर जाए, चोट लग जाए, गिर जाए। हमारा तो हाल यह कि बच्चों की नासमझी से छोटी बहन को चोट ही लग जाए, वो झूले से गिर जाए, तो हम फिर उनके सामने ज़ुबान खोलते हैं, लेकिन इस तरह की बातों का फिर ज़्यादा असर नहीं होता। हर वक्त अगर हम सारी चीज़ों को टोकते रोकते रहेंगे तो वो दुरुस्त नहीं होंगी। फिर दूसरी बात ये होती है कि शुरू में आपको अपने अंदर रखना पड़ता है, फिर आपका अपना ज़र्फ़ मज़बूत होता है। मैं जब सब्र जमील को सोचती हूँ तो मेरे जहन में गैसी गुब्बारा आता है। आप लोगों ने कभी बचपन में देखा होगा, पहले बिल्कुल हल्का सा एक कागज़ का टुकड़ा लगता है, यानी होता तो वो प्लास्टिक का ही है, लेकिन जूँ ही आप उसमें हवा भरते हैं तो वो फूलना शुरू हो जाता है। फिर एकदम अगर आपके हाथ से वो छूट जाए तो ऊपर चला जाता है, और हम बड़ी कोशिश करते होते थे कि किसी तरह इसको नीचे लेके आए, रस्सी और डोरी के साथ बांध के रखा जाए तो रहता है। बिल्कुल इसी तरह से एक इंसान को जब भी कोई तकलीफ़ आती है तो जो गैस है ना, जो उसके अंदर वज़न पैदा करेगी चीज़, जिससे इंसान ऊपर उठेगा, वो क्या है, वो इंसान का सब्र है। हम उसको ज़ाया कर देते हैं। आप प्रेशर कुकर से इसको मिसाल ले लें। प्रेशर कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो चूल्हा नीचा जितना तेज़ होता जाता है उतना अंदर प्रेशर ज़्यादा बनता है, और उतनी अंदर ज़्यादा हलचल मचती है, तो वो विसल तो बजती है लेकिन उसमें से एक कतरा अगर बाहर आ जाए तो आप देख सकते हैं क्या ख़तरा होता है। जिस तरह हम उसके प्रेशर को चेक करते हैं, कोई झोल ना हो, क्योंकि ख़तरनाक होता है, प्रेशर फट भी जाते हैं कभी कभी, तो उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर रखें। वही खाना जो एक घंटे में पकता है, आम हालात में कोई चीज़ गलानी हो कुछ हो, आपने देखा प्रेशर कुकर में वो 5 मिनट में गल जाती है। फ़र्क क्या है कि प्रेशर कुकर को, प्रेशर को अंदर रखना आता है। जब आप अपने अंदर रखते हैं ना दूसरों की तकलीफ़ों को, सदमों को, तो आप दूसरों को जल्दी गला लेते हैं, आप दूसरों को जल्दी माइल करते हैं। हम फट से फटक पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं मैं तो फट ही पड़ी। आप फट गए ना तो अब कभी भी अगला नहीं गलेगा। अगर आप चाहते हैं तकलीफ़ें देने वाले, दुख देने वाले, आजमाने वाले, और हम सब इंसानों की इस दुनिया में ये कभी नहीं होगा कि हमें कोई दुख ना दे, हमें कोई तकलीफ़ ना दे, तो आप उस तकलीफ़ को अपने अंदर रखें, वो आपको गैसी गुब्बारे की तरह ऊपर उड़ाएगी, फिर आपका जर्फ बुलंद होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, फिर एक वक्त ये भी आएगा कि कोई आपको ना सताए तो आप हैरान होंगे। और फिर एक उससे आगे एक और वक्त आता है कि आप सताने वालों को दुआएं देंगे कि उन्होंने मुझे तकलीफ़ दी, उस तकलीफ़ में मैंने सब्र किया, उस सब्र में अल्लाह की तरफ से मुझे खुशखबरियाँ मिली और मेरा वस बढ़ा। ये वो दर्जे होते हैं जो आम तौर पे हम नहीं समझ सकते, और ये दर्जे जिसको मिल जाते हैं फिर उसको ना तकलीफ़ देती है और ना खुशी तकलीफ़ देती है। इंसान के लिए हर मौका अल्लाह से कुर्ब का ज़रिया बनता है। ये शख्सियात ऐसी नहीं बन जाती, तो हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, फलां फलां। इस सबक में हमने बाप का सब्र देखा है, अब आगे देखेंगे बेटे का सब्र। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाप का सब्र बेटे की जुदाई का है, बेटा छिन गया जिससे प्यार था। अब आज के सबक में हम देखेंगे कि यूसुफ़ का सब्र है, यानी एक खूबसूरत औरत मोहब्बत फेंक रही है, दिल फेंक है, तो इस पूरी सूरत का जो थीम है ना वो सब्र जमीली है, ब्यूटीफुल पेशेंट। और नाम कितना प्यारा है, हम तो सब्र को कभी खूबसूरत नहीं कहते, लेकिन अल्लाह कहता है फसब्रुन जमील। खूबसूरत हो जाते हैं वो लोग जो तकलीफ़ों में लोगों की बातों पे सब्र करते हैं। और कहाँ कोई एक बात हमको कह दे, फिर देखें हम अगले के पिछलों तक पहुँच जाते हैं। क्यों हज़रत अबू हुरैरा की बात याद आ जाती है कि जब किसी ने उनको आके कहा कि आपको लोग कोई बुरा भला कह रहे थे, हम होते तो वहीं रोने धोने और सफाइयाँ पेश करनी शुरू करते और बताते कि हमने उनके लिए कितना कुछ किया। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त, मुझे तो हर वक्त तीन बातों का गम है कि आज तो नेकियां कर रहा हूँ, पता नहीं मौत किस हाल में आनी है, मुराद यह कि मेरा कहीं इंजाम सू तो नहीं होगा, इंजाम बुरा तो नहीं होगा, और दूसरा यह है कि जब अमाल नामों में वज़न होगा तो उस वक़्त मेरा पलड़ा भारी होगा कि हल्का, और तीसरी बात यह है कि जब उलसरात में जाएंगे तो उस वक़्त मैं खैर से गुजर जाऊँगा कि नहीं। अगर इन तीन मौक़ों पर अबू हुरैरा बच के निकल गया तो उसको कोई परवाह नहीं है कि कोई उसको अच्छा कहे या बुरा कहे। हु केयर्स, लोग मुझे बुरा कह लें क्या फ़र्क पड़ेगा अगर अल्लाह की नज़र में मैं बुरी नहीं। और कहते हैं अगर मैं इन तीन में से किसी एक मुकाम पर रोक लिया गया तो फिर दुनिया के हर बंदे को इसका हक पहुंचता है कि वो अबू हुरैरा की बुराई करे कि देखो कितना बदबخت था, मौत उसकी बुरी आई, नाम अमाल बाएं हाथ में मिल गया और पुल सरात से रुक गया। तो असल बात ये कि जब तरजीहात बदलती हैं ज़िंदगी की तो उसके बाद इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को रेनोवेट करता है। सब्र जमील कह के इंसान एक नई शख्सियत बनता है, अल्लाह ताला उसको तोड़ के आजमाइशों की भट्टी में डाल के लोगों की तरफ से गम तकलीफ़ें परेशानियां दिलाकर अपने काम का बनाता है। यही चीज़ हमें इंशाल्लाह सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तनाजर में मिलेगी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मूसा फतन्ना का फतूना, हमने तो तुम्हें आजमा आजमा के आजमा लिया, जिसको हम कहते हैं तुम्हें तो खूब आजमाया, फिर उसके बाद तो हमारे अंदाजे पे हुआ, यानी फिर तेरा किरदार वो बना कि जो हमें मतलूब था तो हमने तुझे चुन लिया। तो बात चाहिए कि हमारे अंदर बहुत खोट खपट होता है लेकिन अल्लाह हमें चुनना चाहता है, इसलिए लोगों को कहता है इसको तकलीफ़ें दो, इसको दुख दो, इसको परेशान करो, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला बचाता है। अगर आप यहाँ तक के हज़रत यूसुफ़ के किरदार को देखें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को और उनके हालात को मैच कीजिए, तो ये सूरत जब नाजिल हो रही थी नबी सल्लम पे, जैसा कि जिक्र किया सूरत के शुरू में, हालात बड़े ख़राब थे और आपकी जान लेने की कोशिशें भी अब हो चुकी थीं और अबू तालिब का इंतकाल हो गया, हज़रत खदीजा चली गई, उसके बाद क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लान्स थे, दारुल नदवा में ये लोग जमा हुए, वहाँ बैठ के इन्होंने मीटिंग की। आप उसको रिलेट कीजिए अख़वान यूसुफ़ की उस मीटिंग से जो बैठ के उन्होंने की, जो हमने सुना कि कैसे बैठ के सोच रहे हैं कि इक्तुलु यूसुफ़ और ये सारी बातें। उसके बाद भाई जो थे वो बाप के पास आए और कहा कि हम इसको ले जाते हैं अपने साथ सैर के लिए। इसी तरह की पेशकशें मक्का वालों ने भी की थी, नबी सल्लम को झांसे देने की कोशिश की और बाज़ दफ़ा रिश्वतें, जिसको आज की ज़ुबान में कह लें, और नजराने देकर अपनी तरफ करने की कोशिश की। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को हुक्म दिया हिजरत का। आप जब हिजरत में निकले तो आपके साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला होते। उसके बाद आप देखिए कि आप गारे सौर में कुछ दिन रहे। ये वक्त अब यूसुफ़ की ज़िंदगी का है, ग़ियाबतिल जुब्बी। दुश्मनों ने सोचा कि हम यूसुफ़ को रास्ते से हटा देंगे, हम इसको लोगों की नज़रों से भी और मोहब्बतों से दूर कर देंगे। उनको नहीं पता था कि ये कुआँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरक्की और उनकी बादशाही और मिस्र के वज़ीर ख़जाना बनने का राह हमवार कर रहा है। इसी तरह अल्लाह के नबी अगर 3 रातें गारे सौर में छुपे भी, लेकिन मदीना में आने के बाद आपको कितना ज्यादा उसमें जोश अरूज मिला कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगले दौर में गलबा दिया, इसी तरह से इनको दिया। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए, उसके बाद तकरीबन 6 साल तक खूब मदीना में हालात तंग रहे। उसके बाद जंग ना करने की एक कट्रीटी हुई जिसको आप सुलह खुदैबिया कहते हैं। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब अगली जिंदगी के भी अदवार चलेंगे, और बिल आखिर फतेह मक्का के मौके पे 8 हिजरी में नबी सल्लम के सामने वो सारे थे जिन्होंने आपको पिछले 13 और 8 साल तकरीबन 21 साल तक आपको सताया हुआ था, और उन सबको फिक्र थी कि आज पता नहीं अल्लाह के नबी हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन आपने उस वक्त भी यही कहा था कि मैं तुम्हारे साथ वही कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाई को कहा था कि ला तसरी वाले कुमल यौम, आज के दिन तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है और तुम्हें अल्लाह माफ करे और मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। तो ये किरदार जो होते हैं ये अल्लाह के नबियों को क्यों दिखाए जा रहे थे कि अब आने वाले वक्त में आपने भी यही मामला करना है। बस एक आखिरी बात, वकजालिक यजतबी का रब्बुक, इस तरह तुझे तेरा रब चुनेगा। बाप क्या तबीर दे रहे हैं बाप बेटे के ख्वाब की कि अल्लाह तुझे चुनेगा, और अगले ही कुछ दिनों में क्या हो गया, बेटा भाइयों के हसद का शिकार हो गया। क्या पता चला, किसी भी ख्वाब की ताबीर जरूरी नहीं कि फौरी हो। हम जिस रात खैर से अल्लाह के हुक्म से कोई अच्छा ख्वाब देखते हैं ना, सारा दिन हम इधर उधर ताड़ रहे होते हैं कि अब इसकी कोई अच्छी ताबीर होगी, देखना अभी कोई हमें तोहफा मिलेगा, कोई गिफ्ट मिलेगा। अच्छा ख्वाब देखा और उससे अगले ही चंद दिनों के अंदर आजमाइश आती हुई दिखती है, और ये ख्वाब पूरा कब होगा, 40 साल बाद। उलमाए किराम कहते हैं कि किसी ख्वाब के पूरा होने की हद उम्र मुद्दत 40 साल है, 40 साल बाद भी उसकी ताबीर आ सकती है। कभी आपने बचपन में कोई ख्वाब देखा होता है, फिर आप उसको भूल भी चुके होते हैं, या कभी कभी आपको याद भी आता है, लेकिन उसके बाद एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला उसको पूरा कर देता है। तो अल्लाह अपने कामों की बातें खूब जानता है। फिर एक बात सामने जहन में आ गई, और वो क्या है कि बड़े भाई ने ये क्यों कहा कि चलो इसको मारो नहीं लेकिन किसी कुएं में डाल दो। यहाँ अगर कंपेरेटिवली देखें तो भाई का ये काम दूसरों की निस्बत अच्छा है, लेकिन उलमाए कराम कहते हैं कि अगर इस वक्त वो पूरा अमर बिल मारूफ करता और नहीं अनिल मुनकर का काम पूरा करके ये कह देता कि बिल्कुल ऐसा ना करो, बाप से उसका बेटा जुदा करा दोगे, तुम्हें इससे क्या मिलेगा, तो ये ज्यादा बेहतर था। लेकिन अमूमन हम अपनी जिंदगी में यही करते हैं, बड़े गुना को ये सोच के नहीं करते कि नहीं नहीं बड़ा गुना ये नहीं करते, चलो ये छोटा ये कर लेते हैं। हमारे गुमान में क्या होता है कि अल्लाह छोटे छोटे गुनाहों पे तो स्माइल ही कर देगा, चलो ना इसने अब ये बड़ा भी तो छोड़ा था ना, ये नहीं करना चाहिए। बस आप देखिए कि आपके सामने कई मुख्तलिफ लोगों के काम दिखते हैं कि लोग बहुत बड़े बड़े गलत काम कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं चलो मैंने जाके वो काम किए तो नहीं ना, बस मैं वहां जाके बैठ गई थी। तो ये वही कैफियत होगी जो यहाँ रोबेल या यहूदा के इस किरदार से दिखती है कि उन्होंने बड़ी चीज मांगी होती तो हो सकता है कि अल्लाह सुब्हान तआला उसको बड़ी चीज की तरफ भी ले आता,